देवियों सज्जनों, आप सबको नमस्कार है। गीता के चैप्टर 13 के 13 अध्याय के हम चल रहे हैं, आज उसकी 19वां भाग है। मेरे साथ मिलकर के बोलिए, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। पिछले रविवार को हमने चर्चा की इस मंत्र के बारे में। कुछ लोग उस रियलिटी को, सत्य को अलग अलग रूप से जानते हैं, जिसकी जैसी इनहेरेंट टैलेंट है, इनहेरेंट नेचर है, जिस तरह की उसका टेम्परामेंट है, जिस तरह की उसकी टेंडेंसी है, वो उस रास्ते से उसको पाता है। सच्चाई को, सत्य को हर कोई पाता है। कोई साइकिल से जाकर के पहुंचता है, कोई कार से पहुंचता है, कोई हेलीकॉप्टर से पहुंचता है। पहुंचने में देरी नजदीकी हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कौन सा मार्ग कितना आसान है, कौन सा डिफिकल्ट है, पर जो आपके लिए मुश्किल है हो सकता है किसके लिए बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों के लिए मैथ बड़ा मुश्किल है, मैथमेटिक्स पढ़ना, और बहुत लोगों के लिए बहुत एंटरटेनिंग चीज है, बड़े हाथ की खेल है, फटाफट कर लेते हैं। कुछ लोगों के लिए भाषाएं सीखना बड़ी मुसीबत है, कुछ लोगों के लिए बच्चों की खेल जैसा है, वो कोई भी भाषा फटाफट सीख जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति का कैसा नेचर है। जो आपके लिए मुश्किल है हो सकता है किसी के लिए आसान हो, जो दूसरे के लिए मुश्किल है वो आपके लिए आसान हो। और ये जो लिबर्टी ऑफ वेज है, जो अलग अलग रास्ताओं के लिए जो आजादी है, व्यक्ति अपनी जितनी सामर्थ्य है, जो एबिलिटी है, जिस तरह की उसकी टेम्परामेंट है, जिस तरह का उसका नेचर है, उस रास्ते से वो उसको जानने की कोशिश करता है। जिसके अंदर जो इमोशनल बहुत ज्यादा है, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की शक्ति नहीं है, जो काम करने में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, बहुत ज्यादा इमोशनल है, वो अपने इमोशन को अस्त्र बनाता है, वो उस इमोशन के द्वारा ही उसको पाने की कोशिश करता है। जब आप अपने प्यार को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि आपको कल तक दिखने वाले शत्रु में भी उस ईश्वर की रिफ्लेक्शन दिखने लगे, वो हर प्राणी के अंदर वही दिखने लगे, अब हर किसी को प्यार करने लगे, सारा संसार जब आपका अपना मित्र जैसा दिखने लगे, तो आपका प्रेम बहुत ऊंचा बढ़ चुका है, परम प्रेम हो चुका है, और आप उस इमोशनल सुप्रीमेसी के द्वारा उस ईश्वर को अनुभव करते हो, जिसे हम भक्ति मार्ग कहते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर एक मार्ग अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है। आप ज्ञान मार्ग से जाते हैं, भक्ति से जाते हैं, कर्म से जाते हैं, ये सब इंटरडिपेंडेंट होता है। जब व्यक्ति प्रेम के रास्ते पर चलता है, उसमें भी उसको ज्ञान की, कर्म की, ध्यान की, कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, पर वो थोड़ा गौण हो जाते हैं, उसका प्रेम भाव ज्यादा बड़ा हो जाता है। कुछ दूसरे टाइप के लोग हैं जिनको अंदर जाना ज्यादा आसान लगता है, संसार ज्यादा उनको बेकार लगता है, जिनके अंदर डिटैचमेंट की भावना बहुत ज्यादा है, वैराग्य की भावना ज्यादा है, वो अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, अपने मन को कंट्रोल करते हैं, इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, अंदर जाते हैं जाते हैं, वो बाहरी दुनिया की नहीं, अंदर की ओर जाने की कोशिश करते हैं, और आखिर में उस प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान प्रक्रिया के द्वारा, वो उस परम सत्व को रियलाइज करते हैं। और जिस दिन आपको अपने अंदर रियलाइज करते हैं, उस दिन फिर आपको वही अंतिम सुप्रीमेसी जो भक्ति मार्ग में उसको हुआ, आपको भी वही होता है। आपको फिर वो हर कण कण में, हर पशु में, पक्षी में, कीड़े में, मकोड़े में, पेड़ में, पौधे में, वही परम सत्ता की, परम ब्रह्म का ज्ञान होने लगता है। आपका मार्ग अंदर की ओर जाने का था, किसी को बाहर की ओर जाना था। किसी के अंदर रजोगुण की मात्रा अधिक है, बहुत डायनामिक है, बहुत वर्कहोलिक है, वो काम किए बिना रह नहीं सकता, उसको कुछ ना कुछ करना है, वो घंटों महीनों 24 बैठ नहीं सकता, तो वो काम को अपने साधन बनाता है ईश्वर को पाने के लिए। जब वो नरों में नारायण को देखता है, अब वो नारायण की सेवा करने के बहाने वो नरों की सेवा में लग जाता है, पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के वो सेवा में लग जाता है। अपनी वो जो डायनामिज्म है वो उसको कन्वर्ट कर देता है ईश्वर की समर्पित करने में। और वो जब हर प्राणी के अंदर उस परम सत्ता को अनुभव करता है और उनकी सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देता है, कोई एक्सपेक्टेशन के बिना, कोई ईगो पैदा किए बिना अगर शुरू कर देता है, तो वो उस रास्ते पर चल पड़ता है और उसकी जो अंतिम कल्मिनेशन है वहीं पर पहुंचता है जहां कोई अंदर जाकर पहुंचता है, जो कोई प्रेम के मार्ग से, कोई ध्यान के मार्ग से पहुंचता है। तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, पर अगर वो प्रॉपर हुए है और प्रॉपर तरीके से व्यक्ति जाता है, वो उस सत्य को आखिर में जानता है। वो सत्य क्या है कि तुम दो चीजों से बने हुए हो, एक शरीर है, मैटर है, जो थोड़ी देर के लिए होता है, और एक नित्य है, स्थाई है, शाश्वत है, इटर्नल है, वो तुम्हारे आत्मा है। ये संसार दो चीजों से बना है, एक पूरा यूनिवर्स जो आपको विजिबल है, जो आपको दिखता है, वो उन चीजों से बना है जो कभी नष्ट हो सकते हैं, पर उसके हर जर्रे में, हर कण कण में जो चीज समाया हुआ है वो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है। तो आप किसी भी मार्ग से जाते हैं वहीं पहुंचते हैं, पर किसी भी मार्ग के लिए जो बेसिक चीजें जरूरी हैं, जो हमने पिछली बार चर्चा की थी, वो ही थी कि आपकी बुद्धि या मन जितना निर्मल होगा। आप भक्ति के प्रबल भक्ति को प्रधान अस्त्र करते हैं या ध्यान को प्रधान अस्त्र बनाते हैं या आपके कर्म को प्रधान अस्त्र बनाते हैं। जब प्रधान बनाते हैं तो बाकी उसके सैनिक बन जाते हैं। जब आप भक्ति के द्वारा चलते हैं तो ज्ञान कर्म उसके सैनिक बन जाते हैं। जब आप ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं तो भक्ति, कर्म, ध्यान उसके सैनिक बन जाते हैं। जब आप ध्यान मार्ग पर चलते हैं तो एक किसी के बिना आपकी गुजारा नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मैं केवल भक्ति से पहुंच जाऊंगा। केवल भक्ति करने वाला तो अंधा होता है, वो तो पत्थरों में सर फोड़ फोड़ के अपना सर खराब करता है। केवल ज्ञानी बड़ा अहंकारी होता है। रावण बड़ा ज्ञानी था, ना कोई भक्ति थी, ना कोई अंदर की कोई प्रेम भावना थी। केवल ज्ञानी बड़े अहंकारी होते हैं, दुनिया को बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं, काफी खाली पढ़े लिखे लोग इस दुनिया की आज के बर्बादी के कारण पढ़े लिखे लोग होते हैं। लाखों सालों की ये जो प्लैनेट है, आज तक उसके लाखों साल हो चुके हैं इस अर्थ को बने हुए, आज तक जितनी बर्बादी इस अर्थ में, प्लैनेट में, ग्रह में नहीं हुआ, 400 साल के साइंटिफिक डेवलपमेंट में इस धरती की आयु, लाखों सालों की पृथ्वी जो आगे जीने वाली थी, आधे के आसपास हम घटा चुके हैं। और करने वाले कौन है? पढ़े लिखे बड़े ज्ञानी महात्मा लोग, जिनको हम साइंटिस्ट कहते हैं, टेक्नीशियन कहते हैं, सक्सेसफुल लोग कहते हैं, उन्हीं लागों के कारण ये धरती कगार पर पहुंच गया। जब आप केवल ज्ञान पर जाते हैं, आपके अंदर कोई इमोशन नहीं होता है, आपके अंदर कोई ईश्वर की प्रति भावना नहीं होती है, रियलिटी को जानने की कोई इच्छा नहीं होती है, दूसरों को सुख देने की कोई भावना नहीं होती है, तो आप खतरनाक बन जाते हैं। इसीलिए हर कोई इंटर रिलेटेड है। आप कितने बड़े ज्ञानी हैं या भक्त हैं, अगर आप कुछ एफोर्ट नहीं करते, कुछ करते ही नहीं है उसके लिए, निठल्ला आदमी है, तो आप भिक्षा को भी दक्षिणा समझ करके गुजारा करते हैं और हिपोक्रेसी को फैलाते हैं। तो जिस भी मानसिक भावना के साथ जिस तरह की शक्ति आपके अंदर है, उसको प्रयोग करके आप उस रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं, आखिर में आप वहीं पहुंचते हैं, आपका कैरेक्टर वैसा ही बनता है। बड़े मजेदार चीज आप गीता में देखेंगे, कृष्ण जब वो अलग अलग चैप्टर में अलग अलग तरह के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं कि ये स्थित प्रज्ञ का, योगी का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कभी कभी वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो भक्त होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कभी वो योगी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब आप वो सब लक्षणों को पढ़ते हैं अलग अलग चैप्टर में, बड़े मजेदार बात देखेंगे, हर चैप्टर में हर व्यक्ति का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो लक्षण है, वो भक्त है या वो ज्ञानी है या वो योगी है, उन सबका एक ही लक्षण दिखता है। क्या? जो सुख में दुख में एक जैसा रहते हो, जो अच्छे में बुरे में एक जैसा रहता हो, जिसका मन हमेशा शांत रहता हो, जो हर परिस्थिति में अपने आप को बनाए रखता हो, हर पशु में पक्षी में प्राणी में उस सत्ता को अनुभव करता हो, ये बेसिक एलिमेंट सब चीजें में होता है। इसीलिए कोई भक्त ज्ञानी से अलग, ज्ञानी कर्मी से अलग नहीं होता है। अगर आपके अंदर में परिवर्तन आता है, क्योंकि बेसिक चीजें फॉर्मूला है कि आपका मन निर्मल है कि नहीं है। आपकी बुद्धि को साफ करने के लिए आप क्या करते हो? आप अपने इंटेलेक्ट प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हो? आप अपने माइंड को प्यूरिफाई के लिए क्या करते हो? अगर ऐसा कुछ नहीं, आपके मन में कोई बदलाव नहीं हुआ, आपके मन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, आपके इंटेलेक्ट में कोई चेंज नहीं आया, आप ऊपरी ऊपरी आप हजारों घंटे तक साधन करो कि 5 करोड़ बार जप करो, आप कुछ भी करो, मंदिर में सर फोड़ फोड़ के सारे खून बहा दो, आप हिपोक्रेट से ज्यादा और कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। क्योंकि वो सारी ऊपरी दुनिया है, आपके अंदर तो कुछ बदल नहीं रहा है। आपका चरित्र नहीं बदल रहा है, आपके कैरेक्टर नहीं बदल रहा है, आपका मन नहीं बदल रहा है, आपकी बुद्धि नहीं बदल रही है। पब्लिक में आप के खास व्यक्ति के नाम से रिकॉग्नाइज होने लग जाते हैं और आपको गलतफहमी होने लग जाता है कि मैं कोई बड़ा भक्त बन गया, ज्ञानी बन गया, ध्यानी बन गया, योगी बन गया। असलियत में आपका अंदर उतना ही खराब है या अच्छा है जो आम आदमी का होता है, जो कभी किसी स्पिरिचुअलिटी में गया नहीं है, उससे आपका मन में कोई चेंज नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आपका ये किया धरा सब बेकार है। अगर बदल रहा है तो यू आर इन दिस गुड ट्रैक, राइट ट्रैक, तो फिर आप राइट ट्रैक पर आओ। तो कृष्ण कहते हैं, लोग कोई ध्यान से, कोई खुद के द्वारा खुद से, कोई सांख्य या ज्ञान मार्ग से, कोई कर्म मार्ग से, उस परम सत्ता को, उस रियलिटी को, वो रियलिटी क्या है कि जो जैसा है उसको ऐसे जानना, यही सत्य है। ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये संसार क्या है, ये बना कैसा है, लोग जानने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए। अन्येत्वेवम जानन्तः श्रोत्वान्येभ्या उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः अन्येत्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः अन्ये तु एवं अजानन्त। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता नहीं है, ना जो ध्यान मार्ग का पता है, ना ज्ञान से पता है, ना साधना का तरीका पता है, उनको कुछ पता नहीं है। उन्होंने सिर्फ दूसरों से सुना है, कहीं कोई मौका मिला, कहीं से सुना है, पढ़ा है, जाना है, और जो पढ़ा सुना जाना उसको उन्होंने प्रैक्टिस में लाया, उन्होंने कोशिश किया कि उसको इंप्लीमेंट किया जाए। और उसको दूसरों से सुन करके, पढ़ करके जानने वाले लोग भी जब उन चीजों को अमल में लाते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, वो भी मृत्यु को पार कर जाते हैं, वो भी उस परम तत्व को पा जाते हैं, वो भी जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, वो भी उस कैवल्य निर्वाण मुक्ति को पा जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे शास्त्रों को पढ़े हुए हो तभी बनता है, जरूरी नहीं कि आप सारे टेक्निक जानते हो तभी सब बनेगा। जो जानते हैं वो तो अच्छा है, पर जो नहीं जानता वो दूसरों से सुनकर भी कर सकता है। अगर वो सही जगह पर पहुंचता है, सही ज्ञान को पाता है, और जो पाया उसको अगर वो इंप्लीमेंट करता है, सबसे बड़ी बात है। इम्प्लीमेंट करना। श्लोक का मीनिंग ऐसा है, बट अदर्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ दिस, हियरिंग फ्रॉम अदर्स बट प्रैक्टिसिंग अकॉर्डिंग टू दे टू बींग डिवोटेड टू व्हाट दे हैव हियर्ड टू क्रॉस ओवर देयर। जिन्होंने जाना वो तो उस मृत्यु चक्र को पार कर जाते हैं सत्य को जानने के बाद। जो नहीं जानते, ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, वो जब दूसरों से सुनते और जो सुना उसको प्रैक्टिस में लाते हैं, वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, उसी अंतिम सत्य को वो पा जाते हैं। पर सुनने के लिए, जैसे कोई ग्रंथ पढ़ने के नाम पर आप कोई भी किताबें बाजार में मिलता है, अब हजारों तरह के किताबें मिलता है, आप कहेंगे कि मैं लाखों किताबें पढ़ा हूं, पर आखिर में जब आपको कोई डिस्कशन करे, आपकी ज्ञान की कोई पता करे, पता चला सब कचड़े ज्ञान, जो आपको ही सब पता है, जितने तरह के कचड़े हैं। भारत में आप जाएंगे, दिल्ली में हमने देखा, कभी आप पुरानी दिल्ली में जाएंगे, फुटपाथ पर हजारों तरह के किताबें मिलता है। कुछ लोग फुटपाथ की किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाते हैं, पता चला वो ज्ञान इतना खतरनाक है, वो खुद के लिए भी बड़ा आत्मघाती होता है, वह सेल्फ सुसाइडल होता है। अगर आपकी किताबें, जो चीजें आपने पढ़ी, जो चीजें आपने सुनी, वो अगर सही नहीं है, और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आप इसको गलत भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि फिर आप अपने दूसरे को नहीं पता आपने क्या पढ़ा, क्या सुना, क्या जाना, कहां गए, पर क्योंकि आप खुद बहुत समय बिता चुके हैं, बहुत परिश्रम कर चुके हैं, अब आपको अपने अंदर यह एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि जो मैंने पढ़ा इतने सालों से, जो सुना, जो किया, वो बेकार है। पहली बार कहीं से सुना जाना कि ये सब बेकार है, यह एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। फिर आदमी मजबूरन, जानते हुए कि ये गलत है, उसी के साथ जीने के लिए मजबूर होता है, क्योंकि वो अपने ईगो को अपने से हट नहीं करा सकता। जैसे आपने कहानी बार बार सुनी होगी, किसी राज्य में एक चोर पकड़ा गया, बार बार चोरी करता था, सजा नहीं पाता था, पकड़ा गया। तो गांव वालों ने जब चोर को पकड़ा तो उसको सजा देने के लिए उसकी नाक काट दी। अब नाक काट दी तो अपने गांव में कैसे रहेगा भला, पब्लिक सब मजाक उड़ाएगी, जिंदगी भर ताना मारेगी, ये नाक कटाओ है, ये चोर है। तो उसने अपने गांव छोड़ दिया, दूसरे गांव में जाना लगा। जिस भी गांव में जाए तो लोग कटा हुआ नाक देख के मजाक उड़ाते थे या पूछते थे, भाई तेरा नाक क्या हुआ, तो वो क्या एक्सक्यूज दे कि चोरी करके काटा गया, कैसे काटा गया, तो मुश्किल होना लगा। तो उसने जो सबसे बढ़िया और सबसे सबसे रिलायबल और सबसे स्टडी रास्ता है वो अपनाया, वो साधु बन गया, सबसे बेस्ट वे चोरों को, डकैतों को, झूठों को अपने आप को सेव करने के लिए। तो वो साधु बन गया और प्रचारक जंगल के गांव के किनारे, एक अनजान गांव के किनारे जंगल में कुटिया बनाया और रोज भजन कीर्तन करने लगा। आते जाते लोग एक दो ने देखा तो भजन कीर्तन हो रहा है तो बैठ गए, तो धीरे धीरे उनको अच्छा लगा, बैठने लगे। पूछा, महात्मा जी ये नाक क्यों कटा है? बोले, ये मैं बता नहीं सकता, ये बड़ा सीक्रेसी है, सिर्फ जो लायक लोग हैं, जो अधिकारी हैं, जिनके पास वो समझ है, उन्हीं को मैं बता सकता हूं। कुछ दिन और भजन कीर्तन करो तो तुम्हें ज्ञान होगा। लोगों ने सोचा साधु है, हो सकता है कोई खास बात हो, जब वो बोल रहा है सीक्रेसी है तो होगा ही। जैसे आप लोग जनरली सोचते हो, कोई बहुत बड़ा बाबा, ज्ञानी, साधु, योगी व्यक्ति कुछ बोल दे, और वो कैसा भी बोले, सूरज को चांद बोले, चांद को पानी बोले, आपको लगता है कुछ सही बोल रहा होगा। इतना बड़ा आदमी जब बोलता है थोड़े ही कुछ उटपटांग बोलता होगा। ये जो लोग उसके खिलाफ बोलते हैं वो मूर्ख हैं, वो जानते ही नहीं है। बड़े लोगों की बड़ी माया होती है, ये आम अंधेरे में पड़े हुए आदमी समझते नहीं है। तो कुछ दिनों के बाद भक्त दोबारा लोगों ने पूछा, जो रेगुलर आने लग गए थे भजन कीर्तन में, बताइए नाक कैसे कटा? ऐसा है कि जब ईश्वर दर्शन करना था तो ईश्वर ने मुझे, भक्ति में जब मैं बिल्कुल डूब गया, ईश्वर प्रसन्न हुए, ईश्वर ने मुझे कहा, मैं तब तक तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता जब तक तू अपना नाक न कटवा दे। तो मुझे ईश्वर दर्शन के लिए नाक कटवाना पड़ा। अच्छा, तो आपको ईश्वर दर्शन हुआ? जी बिल्कुल हुआ, कैसे नहीं होगा। तो भक्तों ने कहा कि हमारा भी नाक कटवा दीजिए, कुछ करिए, हमें भी भगवान दिख जाए। हम तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखे हैं, भजन कीर्तन तप करते रहते हैं, अभी तक तो कहीं कुछ नहीं मिला, और आप इतने बड़े महात्मा छुपे हुए थे बगल में, हमें पता ही नहीं था, आप ईश्वर दर्शन कर चुके, हमारा भी कुछ भला कर दीजिए। बोले एक ही उपाय है, नाक कटवानी पड़ेगी। बोले ठीक है, नाक कटवा देंगे। फिर तिथि मुहूर्त निकलवा करके, अच्छे मुहूर्त शुभ मुहूर्त देख करके नाक कटवा दी। नाक कटवाने के बाद भक्तों ने आकर बोला कि महाराज ईश्वर तो दिख नहीं रहा है। बोले देख, अगर बाजार में पब्लिक में जाकर बोलेगा कि ईश्वर नहीं दिख रहा है और ईश्वर देखने के लिए नाक कटा था, तो तेरी मजाक उड़ेगी, कितना बुद्धू है, नालायक है। ईश्वर देखने के चक्कर में नाक कटवा के आ गया, तुझे किस उल्लू ने यह सलाह दी, ऐसा मत करो। नाक कट चुका है तो मान लो कि ईश्वर देख लिया, नहीं तो नाक तो कटा, ऊपर से पब्लिक में बदनामी भी होगी ना, कितना दर्द होगा तुम्हें। अच्छा महाराज, तो उस आदमी ने जाकर के गांव में बोला कि मुझे भी ईश्वर दिखाई दे गए। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं भगवान जी। अगर जन्नत जाने के नाम पर करोड़ों लोगों को मारने को तैयार ये यंग जनरेशन खड़ा मिलता हो पढ़े लिखे, तो समझ लीजिएगा ये दुनिया हर तरह के लोग यहां मिलते हैं। तो काफी लोग तैयार हो गए। धीरे 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 नाक कटाओ कम्युनिटी बन गया, नाक कटाओ संप्रदाय, कि जहां ईश्वर दर्शन करने के लिए नाक कटानी पड़ती है। अब हजारों लाखों लोग बाजार में घूमते हैं जिन्होंने ईश्वर को देख रखा है और सबके नाक कटे हुए हैं। राज्य में इतने सारे लोगों के नाक कटे देख करके मंत्री को आश्चर्य हुआ, राजा के मंत्री को। उसने पूछा ये सब क्या है? बोले एक महात्मा, ऊंचे महात्मा आए हुए हैं, वो सबको ईश्वर दर्शन कराते हैं, उसके लिए नाक कटानी पड़ती है, और वही ईश्वर दर्शन कर सकता है जिसका मन निर्मल हो, पवित्र हो, जिसने कोई पाप ना किया हो, उसकी नाक काटनी पड़ती है। मंत्री ने कहा यह बात है तो मेरे भी नाक कटाओ, मैं कौन सा पापी हूं, मैं भी देखना चाहता हूं ईश्वर को। मंत्री ने भी नाक कटाया। जी अब तो राजा के बड़े बड़े ऑफिसर भी नाक कटवाए, जैसे आजकल भी देखेंगे बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, ये आपके प्राइम मिनिस्टर्स, कोर्ट के जस्टिस, बाबाओं के चेले बनते घूमते रहते हैं, और इस चक्कर में कि उनको ईश्वर दर्शन हो रहा है बाबा को दान दे दे करके। तो आखिर में राजा का नंबर आया, बोले मेरे ये सब क्या है, मंत्री नाक कटा रखा है, पूरे राज्य के ज्यादातर लोग को क्या है, ये सब ईश्वर दर्शन कर चुके हैं। राजा को लगा मैं ही अकेला पापी बच्चा, कमाल है, ऐसे ईश्वरदर्शी राज्य में लोग क्या मजाक उड़ाएंगे कि कैसा पापी राजा है। बोले मेरे भी नाक कटाओ, मैं भी ईश्वर को देखूंगा। राजा से लेकर आम आदमी तक सबके नाक कटे हुए थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ईगो बचानी थी। किसी को ईश्वर नहीं मिली, पर क्या करें, कैसे एक्सेप्ट कर ले कि मैंने नाक कटाई और ईश्वर नहीं मिली। इसीलिए उसको प्रोपागेंडा बनानी पड़ती है, उसको प्रचार करना पड़ता है कि यही साधन है। आज की दुनिया तो रिलीजन के नाम पर यही है ना ऑलमोस्ट। तो हम झूठ के सहारे, जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, जिंदगी बिता दिया, अगर कोई उसको आज करेक्ट करने की कोशिश करता है तो हमें आज बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि आप जो बोल रहे हो बड़ा अच्छा लगता है, लगता है लॉजिकल है, ये सही है, पर हमने जो जिंदगी भर किया क्या वो सब गलत है? ये जो इतने पंडित हैं, बाबा हैं, अमुक है, शमुक है, पूजा, सब बेकार है। दिल में हाथ रखकर देखें, आपको भी लगता है वो बेकार है, पर क्या करें, मानने को दिल नहीं मानता। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, औरत हूँ, इतनी दुनिया में इज्जत है, मैं कैसे मान लूं कि मेरी जिंदगी भर जो मैंने किया वो बेकार है, करोड़ों लोग जो करते हैं बेकार है। अच्छा लगता है जब आप बोलते हो कि ये सही लगता है, पर दिल में उतरता नहीं, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है देवियों सज्जनों, क्योंकि इतने सालों की मेहनत कर रखी है जो, उसको कैसे मान लूं कि वो बेकार है। और वो ईगो आपको मुझे करने नहीं देता कि जो लाइफ भर मैंने सीखा जाना, वो गलत किताबें पढ़ी, गलत ज्ञान लिया, जो भी लिया, वो मुझे अलाउ नहीं करता ये मानने के लिए कि जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मेरा कॉमन सेंस कह रहा है कि हाँ ये ठीक है, जो मेरा अंदर का इंट्यूशन कह रहा है कि ये ठीक है, पर मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूं दिल से। इंटेलेक्चुअली तो एक्सेप्ट कर लेता हूं, क्यों मैं क्या करूं, मेरे चारों तरफ यही तो चलता है और मैं कैसे उसके खिलाफ जाऊं। बिल्कुल उस नाक कटाऊ संप्रदाय की तरह, जहां हर कोई दावा करता है कि मैंने ईश्वर को देखा है, अंदर से हर कोई जानता है कितना उसके साथ फरेब हुआ है, कितने उसके साथ चीटिंग हुआ है। इसीलिए यह बड़ा जरूरी है कि जब आप ज्ञान लें तो आपको पहले पता करना चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल ढूंढते हैं, अच्छा सा अच्छा स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, अच्छे कौन सा सब्जेक्ट के कौन सा यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होती है, अच्छी पढ़ाई मतलब उसके जो इंस्ट्रक्टर हैं, जो प्रोफेसर हैं, कौन अच्छे हैं। आप रिसर्च करते हैं, आप छानबीन करते हैं कि कैसे कहां पढ़ाएं तो बच्चे को ठीक रहता है। इसी तरह जब आप सत्य को ढूंढेंगे तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, अच्छे पुस्तकें देखनी पड़ेगी। और दुनिया में ये बड़ी मजेदार बात है, भारत के लोग बड़े यूनिक होते हैं, जो मेरा समझ है। ईश्वर की कृपा से हमारे यहां दुनिया के सबसे बेहतर ज्ञान के पूंजी हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, धर्म शास्त्र, ज्ञान के अनंत भंडारे, कोई एक दो किताब नहीं है, मुझे याद आया दो चार बता दिया, सैकड़ों किताबें भरे पड़े हैं। किसी भी हिंदुस्तानी भारतीय को पूछो, किसी भी हिंदू धर्म को मानने वाले को पूछो, उसको अपने धर्म ग्रंथ के अलावा सब पता होगा। वो गिना देगा क्रिश्चियनिटी में क्या क्या किताबें हैं, मुस्लिम में क्या क्या किताब होते हैं, और अपना पूछो तो रामचरित मानस, हनुमान चालीसा, ज्ञानेश्वरी लिख तातादेही करता रहेगा। अब उसको समझाओ, 40 साल का हो गया, 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, कि ये तुम्हारा है, वो अंदर से एक्सेप्ट तो करता है पर ऊपर से अब एक्सेप्ट नहीं कर सकता। पूरी जिंदगी हनुमान चालीसा में बीत गई ना, अब कैसे मान ले कि वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता, ये सब भी कोई अच्छी चीजें होती हैं। कभी कभी मैं उन लोगों से पूछता हूं, बता दो भाई ये किसके ग्रंथ हैं, हम उन्हीं के पास चले जाएं, अगर ये तुम्हारे नहीं है। देवियों सज्जनों, आप बड़े भाग्यवान हैं, भगवान ने ईश्वर की कृपा से भारत भूमि में हजारों साल से पहले जो ऋषि मुनियों ने जो अनंत ज्ञान प्राप्त किया, और वो इतना दिव्य, पवित्र, इतना सत्य से भरा हुआ ज्ञान, दुर्भाग्य है कि उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके बच्चे हैं, वो इतने बिगड़े हुए हैं, इतने अलग मेंटेलिटी के हैं, उन्होंने कभी उसका कदर नहीं किया। जिन्होंने किया वो खुद को भी जीता, दुनिया को भी जीता, तलवार से नहीं, अपने दिव्यता से, अपने आध्यात्मिक अनुभूति से। तो इसीलिए जब व्यक्ति कुछ नहीं जानता वो भी उस रास्ते पर चल सकता है, अगर वो कहीं से ठीक से सुने और उसको इंप्लीमेंट करने लगे। सुनने जानने के लिए हमारे लिए यहां जो शब्द था वो थी उपासना। उपासना का अर्थ होता है पास बैठना। शिष्य गुरु के पास बैठता था, डिस्कस करता था, ये नहीं कि हाथ जोड़ के जो गुरु बोल गया सब मान जाता था, क्योंकि गुरु जी बोल रहे तो सब सही बोल रहे होंगे। ये तो नए पढ़े लिखे हिंदुओं की बीमारी है आजकल की, कि जो आगे बोल गए सब सही बोल रहे। ऐसा कभी हिंदुस्तान भारत में नहीं रहा, ऐसा कभी हमारे धर्म परंपरा में नहीं रहा। शिष्य कितना भी भक्तिमान हो, वो गुरु के हर हर वाक्य पर सवाल उठाता था और उसका प्रमाण आपके शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। जहां उसको डाउट होता था, जहां उसके कॉमन सेंस नहीं मानते थे, जहां उसके अंदर की आवाज उसको रोकते थे, वो पूछता था, डिस्कस करता था, बहस करता था श्रद्धा के साथ, विथ रेस्पेक्ट, विथ डिग्निटी, किसी को अपमान करने के लिए नहीं, अपने ज्ञान को अपडेट करने के लिए, सही ज्ञान लेने के लिए। पर वो उपासना का अर्थ यही था कि गुरु के पास बैठ के उस ज्ञान को प्राप्त करना। जो गुरु के पास शिष्य कोई भी व्यक्ति सीखने के लिए जाता था, किसी बुद्धिमान व्यक्ति के पास, किसी ज्ञानवान व्यक्ति के पास, किसी योगी व्यक्ति के पास, किसी भक्त के पास, तो खाली हाथ नहीं जाते थे। क्या लेकर जाते थे? ऐसा नहीं कि कोई पैसा लेकर के, फल फ्रूट लेकर के जाते थे, समिधा लेकर के जाते थे। समिधा कहते हैं वो लकड़ी जो जलने लायक है। ध्यान दीजिएगा, समिधा का अर्थ है सम ईंधन, ईंधन फ्यूल, जो जलने लायक लकड़ी है उसी को समिधा कहते हैं। जलने लायक लकड़ी, लकड़ी तो बहुत तरह के होते हैं, पर हर लकड़ी जलती नहीं है। अगर कच्ची हो, अगर भीगा हुआ हो, पानी में पानी पड़ा हुआ हो, तो वो जलते नहीं है, धुआं फैलाते हैं, वो आग के अपोजिट होते हैं, आग को सपोर्ट नहीं करते। समिधा बन के जाने का मतलब होता है कि मैं जलने के लिए तैयार हूं, मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं है कि जब मैं आपसे ज्ञान ग्रहण करूं तो मैं किसी एनिमिटी के साथ, किसी द्वेष भावना के साथ, किसी ईगो को बढ़ाने के लिए सीख रहा हूं, मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीख रहा हूं, बदलने के लिए सीख रहा हूं, मैं भी आग बनने के लिए सीख रहा हूं। कि जैसे लकड़ी जब आग के शानित कनेक्शन में आता है तो वो आग को प्रमोट कैसे करता है, जब खुद आग बन जाता है, लकड़ी खुद आग बनती है। समिधा आप हवन कुंड में डालते तो समिधा अपने आप आग बनती है, तभी वो आग को सपोर्ट करता है, और एक समिधा से दूसरी समिधा आग ट्रांसफर होता जाता है। हम अपने आप को भी बदलते जाते हैं और ज्ञान की जो फ्लो है उसको भी एक दूसरे को ट्रांसफर करते जाते हैं। यही थी गुरु शिष्य की परंपरा। गुरु से सुनो, सही ज्ञान लो, जब तक तुम्हारा कॉमन सेंस ना माने तब तक एक्सेप्ट मत करो। अगर सही नहीं लगा तो 50 गुरुओं में ढूंढते रहो, तुम्हें तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारा गुरु नहीं। तुम्हें अंदर से संतुष्टि होनी चाहिए तो ढूंढते रहो, जानते रहो। जिस दिन तुम्हें संतुष्टि मिले कि तुमने कुछ पाया, वो सच है, तुम्हारे अंदर से भी उसको एक्सेप्टेंस मिलता है, तो उसको प्रैक्टिस करो। और जो जो प्रैक्टिस करते हैं हम, तो फिर हम खुद ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, अग्नि के रूप में बदल जाते हैं। और ज्ञान पाने का जो श्रुति परंपरा, सुनने की जानने की परंपरा का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो है हमारा अहंकार, ईगो। ये ईगो नहीं आना चाहिए, इसीलिए समिधा। समिधा अगर भीगी हो, गीला हो, तो उसे धुआं उड़ता है, वो ईगो का शाइन करता है। ज्ञान आने पर अगर अकड़ आने लगे, अगर घमंड आने लगे, अगर अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे, तो वो धुआं देने लगता है। तुम समिधा के लायक नहीं हो, तुम चीटिंग करके नॉलेज ले रहे हो, तुम उस नॉलेज का गलत इस्तेमाल करोगे। जैसे आजकल ये एटम पावर बनने के लिए हर कोई कोशिश करता है, इसीलिए नहीं कि उन पब्लिक की भला करना है, इसीलिए लाखों करोड़ों लोगों को मार सकें, पड़ोसी को धमका सकें। नॉलेज तो नॉलेज होता है, पर अगर सही व्यक्ति लेता है, वो करोड़ों लाख लोगों को लाभ पहुंचाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करके, और अगर गलत आदमी के हाथ में पड़ता है तो वो उसे एटम से बम बनाता है लोगों को मारने के लिए। ज्ञान तो ज्ञान होता है, इसीलिए ये बड़ा प्राचीन काल में ऋषि मुनि ध्यान रखते थे। तो ज्ञान सही हाथ में पड़े, इसीलिए आसानी से नहीं देते हैं जो महान, जो जो ज्ञान जानने लायक है, परखते थे। सालों लग जाता था, कितनी उसमें एबिलिटी है उसको हजम करने की, डाइजेस्ट करने की, उसको सही रास्ते में चैनलाइज करने की। अगर तब तक नहीं हो, जब तक नहीं हो पाता था, वो उसको अंतिम ज्ञान नहीं देते थे, क्योंकि ये बड़ा खतरनाक है ज्ञान के साथ एरोगेंसी का आना, ईगो का आना। सज्जनों, देवियों, तो जो व्यक्ति खुद उस रास्ते पे नहीं चल सकता, वो दूसरों से सुन के पढ़ के जान के भी चल सकता है। वो फिर वही अंतिम सत्य को, ये क्षेत्र क्या है, ये संसार क्या है, और वो संसार के द्वारा अंदर समाया हुआ ईश्वर क्या है, मैं क्या हूं, इस शरीर क्या है, और शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा क्या है, उनको बारीकी से समझ सके तो वो भी उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। एक दो और एक बार श्लोक लेते हैं, और एक श्लोक बोलिए मेरे साथ। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरत वंश के श्रेष्ठ अर्जुन, यावत् संजायते किंचित् सत्वम, जो कुछ भी दुनिया में बनता है, पैदा होता है, व्हाट एवर बींग इज बर्न, वो स्टेशनरी है, स्थावर है, या जंगम है, या मूविंग है। मूविंग मतलब सेंटिएंट है, प्राणी है, और स्टेशनरी मतलब जो मैटेरियल है, पहाड़, पत्थर, पर्वत वगैरह वगैरह, जो खुद मूव नहीं कर सकते। ये सब जानो, ये सब दो चीजों से बने हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, एक आत्मा और शरीर, परमात्मा और मैट, जो जो प्रकृति सत्व रज तम, ये सारा संसार दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। आप और मैं खुद बार बार इसकी चर्चा कर चुके हैं, हम दो चीजों से बने हुए चीज हैं। जो व्यक्ति जितना जल्दी और जितने अच्छी तरह समझ ले कि तुम शरीर नहीं हो, इसीलिए 24 घंटे शरीर को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम शरीर भी हो, तुम केवल मन नहीं हो, इसलिए 24 घंटे मन को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ बुद्धि नहीं हो, 24 घंटे अपने इंटेलेक्ट को सेटिस्फाई करने को कोशिश मत करो, तुम और भी कुछ हो, तुम आत्मा भी हो, तुम केवल आत्मा नहीं हो, तो 24 घंटे आत्मा को खुश करने की कोशिश मत करो, तुम एक कॉम्बिनेशन हो, यू आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी माइंड इंटेलेक्ट एंड सोल। तो तुम्हारी ड्यूटी है चारों का ख्याल रखो अगर चाहते हो कि तुम स्वस्थ रहो। अंग्रेजी में आप कहते हैं हेल्दी होना, संस्कृत में इसके लिए जो सुंदर शब्द हमारे आयुर्वेद शास्त्रों में आता है उसको कहते हैं स्वस्थ होना, स्वास्थ्य। आपको पता है स्वस्थ होने का क्या मतलब होता है? बीइंग इन सेल्फ, अपने आप में होना, आप जैसा है उसी रूप में होने का नाम स्वस्थ है। आप क्या है पहले ये तो पता करो कि तुम कौन हो, फिर तुम अपने आप में रहोगे। अगर तुम्हें लगता, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं, अल्दो हमें भी ये नॉलेज है किताबें पढ़ पढ़ के सुन सुन के कि मैं शरीर नहीं हूं आत्मा हूं, पर मैं कभी ऐसा स्वीकार नहीं किया हूं, मैंने कभी दिल से यह एक्सेप्ट नहीं किया है कि मैं आत्मा भी हूं, कि मेरी पूरी लाइफ जो कोशिश करता है वो दो चीजों के लिए, वो है कि मैं अपने फिजिकल प्लेजर ढूंढता रहूं, जो कुछ भी करता हूं अपने बॉडी को खुश करूं, और जो थोड़ा उससे ऊंचे होते हैं वो अपने माइंड को खुश करने की कोशिश करते हैं। माइंड को खुश करना क्या, एंटरटेनमेंट करते हैं, डांस देख के, ड्रामा देख के, गाना सुन के, टीवी देख के, प्रवचन सुन के, पूजा पाठ भी द एंटरटेनिंग ऑफ माइंड का रास्ता है, क्योंकि लोगों को पूजा पाठ में सचमुच कोई स्पिरिचुअल लगाव नहीं है, वो तो इसीलिए करते हैं। अब घर में हवन करो, यहां करो, लोग क्या कहते, मन को बड़ी शांति मिली, क्या करे, जिंदगी भर इतनी बेचैन रहते हैं, हजारों उठपटांग कामों में लगे रहते हैं, छोटी छोटी चीजों से शांति मिली जाती है, पर यह शांति कोई परमानेंट शांति नहीं, हवन करने के अगले दिन फिर बेचैन मिलते हैं, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन भी है। परमानेंट सोल्यूशन है जिस दिन तुम समझ जाओ कि तुम कौन हो, और केवल समझ ना जाओ, वो तुम्हारे दिल में उतर जाए, तुम्हारे कॉन्शसनेस में उतर जाए, तुम्हारे सबकॉन्शस में उतर जाए, तुम्हारे अनकॉन्शसनेस में उतर जाए, कि तुम केवल शरीर नहीं हो। सुबह से रात तक 24 घंटे तक हम जो कुछ करते हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर बॉडी एंड माइंड, नथिंग एल्स। इसीलिए लाइफ भर में जो बहुत ज्यादा जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास कुछ नहीं वो भी दुखी है। ये ग्लैमर जगत वर्ल्ड में जितने लोग, सबसे ज्यादा सुइसाइड कहां होता है? ग्लैमर वर्ल्ड में जो लोग काम करते हैं, मतलब हॉलीवुड में, गाने में, नाचने में, ये डांस में, फिल्मी स्टाइल, क्यों? उनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं लोगों के पास होता है, सबसे ज्यादा जो रिकॉग्नाइजेशन है, पब्लिक रिकॉग्नाइजेशन उन्हीं को मिलता है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट उन्हीं को मिलता है। उसके बावजूद भी सबसे ज्यादा जो सुइसाइड की टेंडेंसी है उन्हीं में दिखती है। फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा वहीं दिखता है, ड्रग एडिक्शन सबसे ज्यादा वहीं दिखता है। क्यों भाई? अगर शरीर को सुख देने से ही सुख मिलता, मन को सुख देने से ही अगर सुख होता तो फिर ये ग्लैमर जगत लोगों के पास क्या कमी है? करोड़ों अरबों लोग उनके दीवाने हैं, ये फिल्मी एक्टरों के, पॉप सिंगरों के वगैरह के, अरबों खरबों डॉलर कमाते हैं, रेस्पेक्ट है, पैसा है, एंटरटेनमेंट है, सब कुछ तो है उनके पास, क्योंकि एक चीज उन्होंने कभी जाना नहीं, किसी ने बताया नहीं। अगर किसी ने बताया, उन्होंने सुना, बोला ये बड़ी अच्छी बात है, आई लाइक योर डिस्कशन, पर कभी दिल में उतरा ही नहीं है, क्योंकि हम अपने, सच कहें हम बीमार लोग हैं, क्योंकि हम अपने पर्सनालिटी के, हाफ ऑफ द पर्सनालिटी के इलाज करते हैं, हाफ को छोड़ देते हैं। तो हम फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, पर उसके नीचे भी इंटेलेक्ट है, सोल है, उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं। कुछ लोग ठीक उल्टा होते हैं, वो बॉडी को इग्नोर करने लग जाते हैं, माइंड को इग्नोर करने लग जाते हैं, इंटेलेक्ट को इग्नोर करने लग जाते हैं, केवल आत्मा में पड़े रहते हैं, वो और खतरनाक होते हैं। ईशोपनिषद की चर्चा आपने सुनी होगी, जो अविद्या को, शरीर के प्रति ज्यादा ध्यान देता है वो अंधेरे में गिरता है, और जो आत्मा के प्रति ज्यादा ध्यान देता है वो उससे गहरे अंधेरे में गिरता है। सबके बैलेंस बनाना जरूरी है। हम कोई खोखले आइडियल नहीं है, परफेक्ट रियलिटी को एक्सेप्ट करना, और ये चैप्टर यही बोलता है, सत्य को एक्सेप्ट करो। सत्य क्या है? एक क्षेत्र है, एक मैटर है, एक क्षेत्रज्ञ है, कॉन्शसनेस है। तुम दो चीजों के बने हुए हो, एक आत्मा है, एक शरीर है। ये संसार दो चीजों का है, एक परमात्मा है, एक संसार है। जब दोनों को तुम ठीक ठीक समझ जाओगे तो तुम स्वस्थ बनोगे, मैं स्वस्थ बनूंगा, संसार स्वस्थ बनूंगा। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।